हरे कृष्ण। आप सब भक्तों का आशीर्वाद चाहता हूँ ताकि मैं कुछ भगवान का गुणगान कर सकूं। आज हम दशम स्कंद के नलकूर मणिग्रीव का जो उद्धार है उस अध्याय से श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं। तो हम तीन विषयों पर चर्चा करेंगे। पहला, कैसे कोई महान भक्त या भगवान जब कोई कार्य करते हैं तो उसमें बहुत गूढ़ विचार होता है। दूसरा, भक्त जो भी घटना उसके जीवन में होती है वह हमेशा उस घटना को अपने भक्ति के अनुकूल कैसे बना सकते हैं यह देखने का प्रयास करता है। और तीसरा, एक भक्त अपने मानव जीवन को, मानव शरीर को किस तरह से उचित पद्धति से इस्तेमाल करता है, इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो ये दशम स्कंध है, ये प्रधान इसमें लीलाएं हैं और लीलाओं के बीच कुछ तत्व ज्ञान आता है। और ये श्रीमद् भागवतम की विशेषता है कि वो उसमें तत्व ज्ञान काफी है। नहीं तो कई बार हम दूसरे पुराणों में पढ़ते हैं कि ये व्यक्ति ने ऐसे किया और ये ऋषि ने उसको शाप दे दिया, और फिर कभी हम सोचने लगते हैं ये ऋषि लोग इतने गुस्से गुस्सा करने वाले लोग थे क्या, क्रोध पे नियंत्रण नहीं था, इस तरह से किसी को भी कभी भी शाप दे देते हैं। और हम कई बार ऐसे पुराणों में देखते हैं तो कभी कभी कुछ ऋषिगण हो सकते हैं जो खामखा क्रोध हो जाते हैं। जैसे हम देखते हैं दुर्वास मुनि क्रोध हो गए, यद्यपि कोई कारण नहीं था अम्बरीश महाराज के प्रति क्रोध होने के लिए, पर जब कोई महान भक्त क्रोध हो जाते हैं तो उसके पीछे बहुत कारण होता है। और ये सुखदेव गोस्वामी की हम पे कृपा है कि नारद मुनि ने क्या विचार किया यह बता रहे हैं वो। तो नारद मुनि ये सब नलकूर मणिग्रह को स्त्रियों के साथ ऐशो आराम करते हुए देखते हैं, नग्न अवस्था में, मंदाकिनी गंगा में। प्रभुपाद जी लिखते हैं वहां पे तात्पर्य में, लोग गंगा में जाते हैं शुद्ध होने के लिए, पर यहाँ पे ये दोनों भाई गंगा में जाके दूषित हो रहे थे। तो सब कुछ चेतना पे निर्भर है। तो अगर हमें सुखदेव गोस्वामी महाराज नारद मुनि के मन के अंदर की बात नहीं बताते तो हम सोचते एक छोटी सी गलती हो गई, इतना बड़ा शाप क्यों दे दिया, पेड़ बना दिया। पर कितना गूढ़ विचार चल रहा है उसके पीछे, ये सभी कई श्लोकों में बताया जा रहा है। तो वास्तव में हमारी जो क्षमता होती है, हमारी क्षमता के अनुसार हम किसी प्रसंग का विचार कर सकते हैं। और जो दूसरे वरिष्ठ भक्त है या भगवान है वो और दूरंदेशी से उसी के बारे में विचार कर सकते हैं। तो इसीलिए कभी कभी हमें हमारी दृष्टि से कोई बहुत गलत लगता है, ऐसे क्यों हुआ है। प्रभुपाद जी के जीवन में उदाहरण आता है कि जब हरिकेश महाराज उनकी सेवा कर रहे थे, वो उनके साथ रह के हमेशा जहां भी प्रभुपाद जाते थे वहां पे वो ट्रैवल करते थे, उनका सेक्रेटरी, उनके कुक, इस अलग प्रकार से सेवा कर रहे थे। और एक दिन अचानक प्रभुपाद जी आ गए, उनको बोले कि आप ईस्ट यूरोप में जाके प्रचार करो, पूर्व यूरोप में आप जाके प्रचार करो, क्योंकि वहां पे कम्युनिज्म था और वहां पे प्रचार करना बड़ा मुश्किल था। तो उनको लगा क्या प्रभुपाद मुझे नाराज हो गए हैं, मैं उनके साथ इतनी अच्छी सेवा कर रहा था और इतना हमेशा प्रभुपाद जी का संग मिल रहा था, अचानक कोई आसमान से बिजली गिर जाए, उस तरह से प्रभुपाद जी बोले आप जाओ। और वो रोने लग गए, प्रभुपाद मैं जाना नहीं चाहता, नहीं आप जाओ प्रभुपाद जी, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। फिर वो कुछ ना कुछ विचार कर रहे थे क्या करे अभी। तो उन्होंने बोला प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी वहां पे पूर्व यूरोप में वहां पे सिर्फ लोग मांस खाते हैं, वहां पे अन्न मिलेगा नहीं। प्रभुपाद जी ने मांस खाओ पर जाके प्रचार करो। तो फिर मैं समझ गए अभी मुझे जाना ही पड़ेगा, अभी कुछ नहीं कर सकते। ईट मीट बट प्रीच। तो वहां पे महत्वपूर्ण बात नहीं है कि मांस खाओ, पर प्रचार करो, ये महत्वपूर्ण है। तो प्रभुपाद जी का भाव, प्रभुपाद जी बहुत प्रैक्टिकल थे, चार नियमों का पालन बहुत जरूरी है। पर अगर परिस्थिति ऐसी है कि कोई व्यक्ति कोई और अन्न है ही नहीं खाने के लिए, तो तुलनात्मक स्तर से मानव शरीर ये प्राणी के शरीर से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानव शरीर में आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए अगर दो शरीरों की बात है, एक शरीर जीवित रहेगा या दूसरा शरीर जीवित रहेगा, तो फिर मानव शरीर के लिए कोई प्राणी का शरीर का त्याग करना अनुचित नहीं है, शास्त्रों के अनुसार है वो उचित है। तो इस तरह से प्रभुपाद जी ने कहा उनको जाओ प्रचार करो, और फिर बड़े मायूसी चले गए। पर बाद में जाने के बाद उन्होंने सोचा कि प्रभुपाद जी ने मुझे भेजा है तो कुछ सेवा करनी चाहिए वहां पे, और बड़े उत्साह से सेवा की उन्होंने, और एक डेढ़ साल में कई हजारों की संख्या में ग्रंथ वितरित हो गए, उन्होंने उन भाषाओं में ग्रंथ ट्रांसलेट करवा लिए और बहुत विशाल रूप से प्रचार हो गया। और जब प्रभुपाद जी के पास वापस आ गए वो अगले साल मायापुर में जब जीबीसी मीटिंग्स थे तब, तो प्रभुपाद जी बड़े प्रसन्नता से उन्होंने उनका आशीर्वाद आलिंगन किया, उनको आशीर्वाद दिया, और प्रभुपाद जी बोले यू आर द बेस्ट ऑफ द ग्रैंड सन्स ऑफ भक्त सिद्धांत सरस्वती। प्रभुपाद जी बोले कि भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पोतों में से आप सर्वश्रेष्ठ हो, सर्वोत्कृष्ट हो। प्रभुपाद जी मेरे शिष्यों में सर्वोत्कृष्ट नहीं बोले प्रभुपाद जी, प्रभुपाद जी का भाव भी चेता देखे, वो सब कुछ देख रहे अपने गुरुदेव के संबंध में। तो इस तरह से कई बार प्रभुपाद जी भक्तों को गुणगान करने के लिए ऐसे बोला करते थे। तो आध्यात्मिक जीवन में अनेक बार अनेक बेस्ट हो सकते हैं, ऐसे नहीं है कि एक भक्त को सर्वोत्कृष्ट बता दिया मतलब बाकी निकृष्ट है, अनेक सर्वोत्कृष्ट हो सकते हैं। पर तभी फिर प्रभुपाद जी बोले तो अभी तुम्हें आपको कैसे लग रहा है, प्रभुपाद जी मैं आपके आपके विरह में आपकी उपस्थिति इतनी महसूस कर रहा हूँ वहां पे, जितनी मैं आपके साथ भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मुझे हमेशा विचार रहता है कि आपका संदेश का मुझे प्रचार करना चाहिए। और फिर प्रभुपाद जी बोले हाँ मैं वही सोच रहा था, मैं सोचता था कि आप इतने बुद्धिमान व्यक्ति हो और यहाँ पे बैठ के आप सिर्फ टाइपिंग कर रहे हो, टाइपिंग तो कोई भी कर सकता है, फिर मैं आपको बोला आप जाके प्रचार करो। तो फिर वहां पे कई जीवीसी के मीटिंग थे, भक्ति चारू महाराज वगैरह सब थे। तो भक्ति चारू महाराज उसके बारे में लिखते हैं कि ये सब आई थिंक प्रभुपाद एंड हिज डिसिपल्स इन जर्मनी इस किताब में बताया गया है। तो बोलते हैं कि ये जब देखा मैंने तो हमें विश्वास हो गया कि हम गुरुदेव का जो भी आदेश है उसका पालन करोगे कितना भी कठिन लगे उससे परम कल्याण होगा। तो एक तरह से वो शाप के समान लगता था वहां पर, प्रभुपाद जी का विचार कुछ और था। प्रभुपाद जी उनको सजा नहीं दे रहे थे, उनको कुछ ऊंची सेवा दे रहे थे, पर उस समय वो ऊंची सेवा जैसे नहीं लग रही थी। तो कभी कभी भक्त जो कार्य करते हैं वह हमें समझ में नहीं आता है। साधारणतया भक्त जो कार्य है उनका आदर्श कार्य होता है, जैसे हरिदास ठाकुर के बारे में हरिदास ठाकुर सनातन गोस्वामी को बताते हैं, उनके वार्तालाप में होता है कि आप आदर्श प्रचार भी करते हैं और आदर्श आचार भी करते हो। तो साधारणतया वैष्णव भक्तों का जो आचार होता है वो एग्जेम्पलरी, वो आदर्श होता है जिससे कि सबको प्रेरणा मिल सकती है। पर ऐसे आदर्श व्यवहार के बीच बीच कभी कभी वैष्णव इस तरह से कार्य कर देगा कि हमें समझ नहीं पाएगा ऐसे क्यों कार्य कर रहे हैं। तो वैष्णवेर, इसीलिए शास्त्र में बताएगा वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञेह न भुजाए, कि हम हमारे बुद्धि से तर्क उतर करेंगे तो समझेगा नहीं ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो आपको इसका मतलब ये नहीं है कि हम चित्र विचित्र कार्य करेंगे और दूसरों को बताएंगे मेरे क्रिया जो है विज्ञेह न भुजाए। हमें क्या आदर्श रूप से कार्य करना चाहिए। पर कई बार जो वरिष्ठ भक्त होते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं, वह बड़े विचार से कुछ कार्य करते हैं। तो यहाँ पे नारद मुनि सोच रहे हैं कि नलकूर मणिक्रियु को एक तरह से भक्ति के लिए बहुत अनुकूल परिस्थिति है। वास्तव में वो कुबेर के पुत्र है और कुबेर शिवजी के सेवकों में से सबसे प्रधान सेवकों में से एक है। शिवजी महान भक्त है, तो नलकूर मणिक्रियु कुबेर जी जो भी है वो भी बड़े भक्त है। तो इसीलिए हम देखते हैं कुमेर आत्मजो बद्ध मूर्ति वेदवत, जो नामोदर आश्रम आते हैं कि ये कुबेर आत्मज, कुबेर के जो प्रिय थे, नारद मुनि के भी प्रति प्रिय थे वो, पर उन्हें जो उनका जो प्रेम था उन्होंने अलग पद से उनको दिखाया। तो उनको भक्ति के लिए बहुत अनुकूल परिस्थिति थी, पर वे क्या कर रहे थे, इंद्रिय तृप्ति में लग के उसको प्रतिकूल बना रहे थे। जब प्रतिकूल बना रहे थे तो फिर नारद मुनि सोचा कि इन्हें ऐसी परिस्थिति में डालना चाहिए कि जिससे इनकी विचारधारा परिवर्तित हो जाए। तो विचारधारा कैसे परिवर्तित होगी, तो उसने सोचा कि इन्हें बहुत इंद्र तृप्ति का मौका मिल रहा है और उसके कारण जीवन का जो ऊंचा तत्व है उसका विचार नहीं कर रहे हैं। और फिर उतना ही नहीं सोच रहे इंद्र तृप्ति कर रहे हैं, वो इंद्र तृप्ति क्यों कर रहे हैं, इंद्र तृप्ति क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बहुत भौतिक ऐश्वर्य है। कि ऐश्वर्य जब आ जाता है तो ऐसे लगता है कि जो धन है धन को बहुत बड़ा मोह क्यों माना गया है, क्योंकि धन से यह भ्रम निर्माण होता है कि मैं नियंत्रक हूं। यदि व्यक्ति का धन है तो कुछ भी एक बटन दबाओ, कुछ पैसे डालो, फिर फ्लाइट आप हवाई जहाज जा सकते हैं, 10 नौकरों को बुला सकते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, धन से जो भी चाहिए हम काफी हद तक कर सकते हैं। बहुत सी चीजें हैं जो नहीं कर सकते हैं, पर वो तुरंत दिखाई नहीं देती है। ऐसे हम अगर बंबई ऐसे शहर में है और लोकल में भीड़ भेड़ जाने जा रहे हैं और वहां पे किसी और धन है, वो एक कार से आराम से चला जाएगा। उस कार से भी आराम से नहीं आ सकते क्योंकि बहुत ट्रैफिक होता है वहां पे, ट्रैफिक जाम भी होते हैं। पर जो व्यक्ति लोकल की भीड़ में उसकी चटनी हो रही है, उसको लगेगा अरे पैसा होगा तो कितने आराम से कार में चले जाऊंगा, एसी कार में आराम से चले जाऊंगा। तो जो जीवात्मा साधारणतया नियंत्रण करने का जो प्रयास करता है उसमें वो विफल होता है, और इसीलिए जो उसको जो धन है उसके प्रति बहुत आकर्षण होता है। धन से यह मोह उत्पन्न होता है या उसे आशा होती है कि धन हो जाएगा तो मैं नियंत्रण यशस्वी रूप से कर पाऊंगा। तो इसे भगवान भी कहते हैं भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृत चेतसाम। तो धन और इंद्रिय तृप्ति, धन से क्या इस भौतिक जगत में जो मोह के दो रूप है, मैं नियंत्रक हूं और मैं भोगता हूं। तो धन से भाव उत्पन्न होता है कि मैं नियंत्रक हूं, और इंद्रिय तृप्ति से भाव उत्पन्न होता है कि मैं भोगता हूं। इसलिए भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां, तो अगर भोग ऐश्वर्य में लग जाता है तो फिर प्रसक्त जो चेतना है वो अपहृत चेतसाम, अपहरण हो जाते हैं चेतना का, और जो मैं सेवक हूं ये चेतना है चली जाती है, और मैं भोक्ता हूं मैं नियंत्रक हूं इसे चेतना उत्पन्न हो जाती है। तो इसीलिए नारद मुनि ने विचार किया कि इनके जो ऐश्वर्य है ऐश्वर्य से इनको मुक्त कर देना चाहिए। साधारण लोग सोचेगा ऐश्वर्य से मुक्त नहीं करना चाहिए, मुझे गरीबी से मुक्त करना चाहिए, पर उनके लिए ऐश्वर्य बंधन का कारण बन रहा था, ऐश्वर्य मोह का कारण बन रहा था, इसलिए वे ऐश्वर्य से मुक्त करने का उन्होंने विचार किया। और ऐश्वर्य से तो ऐश्वर्य से मुक्त करके वो उनको एक गरीब व्यक्ति बना सकते थे, पर सोचा कि नहीं, नियंत्रक का जो भाव है वह हम निकाल देंगे उनसे। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति जीवात्मा पेड़ बन जाता है तो पेड़ में कुछ भी नियंत्रण करने की शक्ति नहीं है लगभग। वास्तव में हमारे जीवन में होता है कि मुझे ये करना है, भौतिकवादी व्यक्ति तो मुझे ये घर बनाना है, मुझे ये नौकरी, मुझे ये जॉब प्राप्त करना है, मुझे ऐसा कार चाहिए, इतनी सारी आकांक्षा होती है। पर पेड़ के जीवन में क्या आकांक्षा होती है? एक ही आकांक्षा कि मुझे ऊंचा बनना है, कि उससे और कुछ आकांक्षा कर ही नहीं सकता है वो। इतने उसकी सीमित संकुचित चेतना होती है कि और कुछ सोच नहीं सकता है वो, तो क्या नियंत्रण करेगा उसमें। तो इसीलिए उनको पेड़ बनाने की सजा दे देते हैं वो। तो जो कई बार भक्त पूछते हैं कि हम जब अगर पांचवा स्कंद पढ़ते हैं, भक्त नहीं पूछते पर भक्त लोग बहुत बार पूछते हैं कि ये पांचवे स्कंद में जो नरक की सजाएं बताई गई है वो इतनी क्रूर है, इतनी बेरहम लगती है, किस तरह से व्यक्ति को जलाया जाता है कि तेल में, किसी व्यक्ति से उसको पीटा जाता है, कांटों से काटा जाता है, तो फिर कैसे करुणापूर्ण भगवान है वो किस तरह से इस प्रकार की सजाएं दे सकते हैं। तो भगवान की करुणा कहां है अगर वो इस प्रकार की सजा दे रहे हैं। तो वास्तव में ये सजा भी भगवान की करुणा है। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति मानव की चेतना में होता है तो मानव की चेतना में वह इंद्रिय भोग करने का जब प्रयास करता है तो वह असीमित मात्रा में भोग नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि मानव शरीर उसके लिए नहीं है। इसीलिए अगर उसको असीमित भोग करना है तो मानव शरीर से उसको नीचे के शरीर में जाना चाहिए। आपके जो पंछी है वो पेड़ में बैठ के भोग कर सकते हैं, मानव रस्ते का नहीं कर सकते, सभ्य हो गए तो नहीं करते, अभी जानवर जैसे हो रहे तो कर रहे हैं, पर शरीर की क्षमता भी बहुत कम होती है। जो प्रभुपाद जी बोला करते हैं कि जो पीजन इज व्हाट, कबूतर जो होता है वो दिन में दर्जनों बार इंद्रिय भोग कर सकता है, तो वैसी क्षमता किसी मानव में नहीं होती है। तो इसीलिए वो मानव को अगर इंद्रिय भोग की बहुत इच्छा है तो उसको जानवर का शरीर दिया जाता है। तो ये जानवर का शरीर कैसे दिया जा सकता है? तो कई लोग ऐसे हैं जो भले ही आत्मा को स्वीकार करते हैं, पुनर्जन्म को स्वीकार करते हैं, पर वो कहते हैं कि जो मानव कभी जानवर के शरीर में नहीं जाएगा। वो कहते हैं कि जो पुनर्जन्म होता है वो केवल मानव जीवन में ही होता है, वो जानवर के जीवन में कभी जा नहीं सकता है। और उसका तर्क अनेक प्रकार से तर्क उत्तर देते हैं। वो सबसे पहले बोलते हैं कि जो जितने भी पूर्व जन्म की यादें किसी को आई है वो सब मानव शरीर की आई है। किसी को मैं कुत्ता था, मैं बिल्ली थे, मैं पेड़ था, ये याद नहीं आता है। दूसरा कहते हैं कि मानव की जो चेतना है वो विशेष है और अध्यात्म की जिज्ञासा कर सकता है और जानवर ये नहीं कर सकते। इसलिए मानव और जानवरों में बहुत विशाल अंतर है और मानव कभी जानवर नहीं बन सकता है, जानवर कभी मानव नहीं बन सकता है। तो वास्तव में ये भ्रांत धारणा है। कई बार जो कोई भारतीय तत्वज्ञानी भी है वो भी इस प्रकार के तत्वज्ञान, आधुनिक तत्वज्ञानी, प्राचीन नहीं, आधुनिक तत्वज्ञानी, वो कहते हैं कि शास्त्रों में अगर ऐसे बताया गया है कि मानव जानवर बनता है वो केवल एक प्रतिमात्मक है, वास्तव में नहीं, मानव जो आत्मा है वो जानवर के शरीर में नहीं जाएगा। क्योंकि उनको लगता है कि जानवर की चेतना में और मानव की चेतना में अलग है, बहुत फर्क है। तो क्रिश्चियन लोग कहते हैं कि मानवों में सोल है और जानवरों में स्पिरिट है। तो उनको पूछे स्पिरिट और सोल में फर्क क्या है, तो उनको पता नहीं है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं स्पिरिट सोल एक है, स्पिरिट सोल दो नहीं है वो। तो इसलिए वो कहते हैं कि उनमें अलग, जानवरों में कहते हैं अलग प्रकार की कुछ आत्मा है और वो आत्मा नाश्वर है। नाश्वर है तो फिर आत्मा कैसे है वो? तो बहुत विरोधाभास है उस उनके तत्वज्ञान में। पर यहाँ पे हम देखते हैं भागवत में बताया गया है कैसे जो आत्मा है मानव शरीर से जानवर के शरीर में जा सकता है। यहाँ तो सीधा मानव शरीर से कहाँ चला गया वो? तो पेड़ के शरीर में। सो प्रभुपाद जी ने कहा इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। तो अभी आजकल के युग में तो इजी जर्नी टू हेलिश प्लैनेट्स है, जो जिस तरह से लोग जीवन जी रहे आसानी से नर्क में चले जाएंगे वो। प्रभुपाद जी को एक बार पूछा गया था, प्रभुपाद जी आजकल का समाज इतना प्रगति कर रहा है। प्रभुपाद जी बोले ये प्रगति क्या है? वो उनकी प्रगति मतलब क्या, आप ऐसे कोई रास्ता है और रास्ता सीधा एक पहाड़ से नीचे गिरने वाला है और जो पहाड़ से नीचे गिरने वाला है तो फिर आप उस रास्ते पर जा रहे हो और तभी एक्सीलरेटर दबा रहे हो तो क्या होगा, और तेजी से नीचे गिरोगे। तो ऐसे प्रगति का क्या फायदा है जिससे वो बहुत तेजी से नरक की ओर जा रहे हैं। प्रभुपाद जी बोलते कैसे चार नियम जो तोड़ना है वो बहुत विस्तार, वो उसको बहुत बढ़ाया जा रहा है, आजकल प्रलोभन दे रहा है। कुछ डेढ़ साल पहले पूना मंदिर में एक गिनीज रिकॉर्ड हमने किया था भक्तों ने कि ऐसे बहुत से विद्यार्थियों को चित्रकला बनाने के भगवान कृष्ण का चित्र कला में सहयोग सहभागी किया था। तो तब से भक्त देख रहे हैं कि अलग अलग प्रकार का कौन सा गिनीज रिकॉर्ड और सेट कर सकते हैं। तो इसीलिए जब भी नया गिनीज रिकॉर्ड आता है तो उसकी न्यूज आती है। तो अभी एक किस प्रकार के गिनीज रिकॉर्ड भी सेट करते हैं वह इतना विचित्र है कि थाईलैंड में एक पुरुष और स्त्री है, उन्होंने 48 घंटों तक एक दूसरे को चुंबन किया और ये गिनीज रिकॉर्ड हो गए। अब इसमें क्या रिकॉर्ड है, इतनी बेशर्मी की बात है ये, उसको रिकॉर्ड बना दिया है और वो गिनीज बुक में लिखा है और फिर सब जगह सब अखबारों में उसको छापा गया है। वास्तव में जो कैसे 48 घंटे का शरीर से पसीना निकलता है, सब सलाइवा निकलता, कैसे है कुछ कर सकते हैं पता नहीं, विचार करने की जरूरत नहीं है। पर ये पॉइंट है कि लोगों का दर्जा क्या है इस प्रकार की चीजों को रिकॉर्ड बता रहे हो। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोला करते थे कि जो आहार निद्रा भय मैथुन है वो जानवर की चीज कार्य है और जो जानवर के जो कार्य है उसको और प्रवृत्त करना, इसको आजकल प्रगति कहा जा रहा है। पर ये प्रगति नहीं है, ये अधोगति है, ये अधोगति है। तो यहाँ पे पॉइंट ये बता रहा था कि ये मैं नरक का उल्लेख कर रहा था कि ये नरक भगवान क्यों निर्मित करते हैं, क्या है कि मानव के और जानवर की चेतना में जरूर बहुत फर्क है, पर ये फर्क नहीं है कि दो अलग प्रकार की आत्माएं हैं उनमें। फर्क यह है उसी आत्मा की चेतना को बहुत निचली स्तर पर लाया गया है। तो ये आत्मा के उच्च स्तर को से नीचे स्तर पर कैसे लाया जाए? अगर हम देखते हैं कोई जो मानव है वह अगर इफ रिस्पॉन्सिबिलिटी निसर्ग वो विष्ठा करता है तो वहां से दूर चला जाता है, पर उसी विष्ठा की ओर जो सुअर है दौड़ते हुए चला जाता है। तो अगर वही आत्मा मानव से सुअर के शरीर में चला गया तो अभी उसको अचानक जो विष्ठा के प्रति इतना घृणा थी आकर्षण कैसे उत्पन्न होगा? तो उसके उस आकर उस चेतना के परिवर्तन के लिए वो जो जरूरी है वह कार्य नरक में होता है। जब नरक में क्या होता है कि इसे एक प्रकार के नरक में बताया गया है कि जीवात्मा को डाला जाता है और वहां पे उसको कुछ भी खाने को नहीं मिलता है। ऐसी नदी है उसमें सिर्फ जो विष्ठा है वही बहती रहती है और कुछ भी खाने को नहीं है। तो विष्ठा में पहले तो दूर चला जाता है, उसे देख नहीं सकता है उसकी ओर, पर बाद में धीरे धीरे कुछ और खाने को नहीं है तो वही खाने लगता है वो। और फिर खाते खाते क्या होता है, उससे आकर्षण हो जाता है, और जब उससे आकर्षण हो जाता है तो फिर उसको सुअर का शरीर दिया जाता है। तो जो जब शारीरिक स्तर पे हमें पीड़ा होती है तो फिर क्या होता है, फिर हम दूसरे किसी चीज की परवाह नहीं करते हैं, और जो शारीरिक स्तर पर चेतना आ जाती है, जिस तरह से अगर कोई व्यक्ति भागवतम के चित्र के उपाख्यान में उदाहरण आता है, कोई व्यक्ति बहुत उपवास कर रहा है, निर्जल उपवास किया है उसने, और अगले दिन जब उपवास छोड़ाना है तो हम बोलते हैं हाँ आपने निर्जल उपवास किया, हम आपका आदर करना चाहते हैं, आपको एक माला पहनाएंगे। माला छोड़ो, पानी दो मुझे पहले। तो क्या है, उस समय यद्यपि साधारण किसी को आदर करेंगे तो अच्छा लगेगा, पर उस समय जब शरीर के प्राथमिक जरूरतें हैं वह पूरी नहीं हुए, तो जो ऊंची ऊंची ऊंचा बाकी ऊंची जो विचार है उसके बारे में व्यक्ति सोचता नहीं है। तो दिस इस तरह से क्या होता है, व्यक्ति की चेतना शारीरिक जरूरतों पर ज्यादा केंद्रित हो जाती है। तो इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति बहुत तपस्या करके धूप में आया है, और धूप में आया उसको बोलते हैं आप हमारे घर में आए हैं, देखो हमारे घर में कितना सुंदर चित्र है, आप ये देखो, चित्र छोड़ो मुझे पानी दो अभी। क्या है मतलब, क्या है कि शारीरिक स्तर पर जो व्यथा होती है तो फिर वो चित्र भले ही सुंदर होगा और उस व्यक्ति को चित्र भी देखने में आकर्षण हो सकता है, पर उस समय क्योंकि शरीर की जो जरूरतें हैं वो पूरी नहीं हुई है तो उस समय उसकी ओर चेतना अधिक चली जाती है। तो जो नरक की पीड़ाएं हैं उनका उद्देश्य नहीं कि भगवान व्यक्ति को तड़पाना चाहते हैं, वो व्यक्ति की इच्छा है कि वह प्राणी जैसा भोग करे, और प्राणी जैसे भोग करने के लिए प्राणी का शरीर उसको चाहिए, पर प्राणी के शरीर का जो चेतना है वो मानव के शरीर से भी अलग है, तो उसकी मानव के स्तर की चेतना है उसको प्राणी के स्तर पे लाने के लिए उसको शारीरिक स्तर पे यातना दी जाती है, जिससे कि उसकी चेतना संकुचित हो जाती है और फिर वह प्राणी के शरीर की ओर योग्य हो जाता है। तो वास्तव में जो भगवान करते हैं वो हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही होता है, भगवान क्रूर नहीं है, हम इस तरह से इच्छा करते हैं इसलिए वो इच्छा की सुविधा भगवान करते हैं। तो वास्तव में यहाँ पे ये पहला पॉइंट हमने देखा कि कैसे वैष्णवे क्रिया मुद्रा विज्ञान मुझे, जो वैष्णव के लिए है वो तो भगवान के लिए भी है, भगवान अगर हमारे जीवन में कुछ करते हैं तो उसका भले ही हमें समझ में ना आए। तो साधारणतया जब भौतिकवादी जीवन भक्ति के जीवन में कुछ होता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई कैंसर हो जाता है, कोई हानि हो जाती है बिजनेस में, तो वाई क्यों मेरे साथ ऐसे हो रहा है, तो ये वाई ये जो सवाल है, इस सवाल से क्या हो जाता है, वो व्यक्ति की जो मानसिक शक्ति है वह क्षय हो जाती है। क्योंकि हम अगर हमारे जीवन में कुछ अन्याय हो रहा है ऐसे हमें लगता है तो फिर हमारा क्या विचार होता है, ऐसे क्यों हो रहा है मेरे साथ, और क्यों हो रहा है इसके कारण हम क्या होता है, हम अभी क्या करना है सोच ही नहीं पाते। तो कई बार लोग कहते हैं महाभारत में कि कर्ण के प्रति इतना अन्याय हुआ, क्यों ऐसा अन्याय हुआ, तो हाँ कर्ण के प्रति अन्याय हुआ अगर हम एक तरह से देखें तो, पर अगर हम देखेंगे तो पांडव के प्रति भी अन्याय हुआ, वो जब छोटे बच्चे थे तब उनके पिता गुजर गए, और फिर वो जब वापस घर में आ गए तो उनके चाचा और उनके चचेरे भाई उनका हमेशा वध करने का प्रयास कर रहे थे, तो अन्याय उनके साथ भी हुआ। तो अन्याय दोनों के साथ हुआ, पर अन्याय के प्रति प्रतिक्रिया क्या थी, पांडवों ने धर्म का मार्ग अपनाया और फिर कर्ण ने जो अधर्म का आश्रय लिया, जो अधर्म का मूर्तिमान रूप था दुर्योधन उसका आश्रय लिया। तो इस जीवन में सबके प्रति अन्याय होता है, वो अन्याय नहीं है क्योंकि पूर्व जन्म के कर्म अनुसार हमें मिल रहा है, पर इस जीवन की दृष्टि से कभी कभी हमें लग सकता है कि अन्याय है। तो कई बार जब हम सोचते हैं ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, तो उससे हमारी जो मानसिक शक्ति है वह क्षय हो जाती है, रिजेंटमेंट जो हम खुन्नस या घृणा होती है, क्यों हो रहा है क्यों हो रहा है क्यों हो रहा है, उसमें ही हमारी शक्ति चली जाती है। पर जो भक्त होता है, जो भी उसी जीवन में होता है, वाय यह पूछने जगह पूछते हाउ कैन आई सर्व, ठीक है अभी ऐसे हो गया अभी मैं क्या सेवा कर सकता हूं, हाउ कैन आई सर्व। हम देखते हैं परम पूज्य भक्ति तीर्थ महाराज के जीवन में वो इतना प्रचंड मात्रा से प्रचार कर रहे थे, अफ्रीका में अमेरिका में बहुत विशाल मात्रा में प्रचार कर रहे थे, और अचानक उनको ये बहुत ही खतरनाक मेलानोमा कैंसर हो गया। और फिर उन्होंने क्या विचार किया कि प्रभुपाद जी का जो आंदोलन है उसका उद्देश्य सिर्फ प्रचार करना, मंदिर बनाना, भक्त बनाना नहीं है, वो हमारे जो अंतिम क्षण है वो तभी भगवान का स्मरण करते हुए कैसे हमें इस शरीर को त्यागना है। और आजकल तो बहुत से लोगों को कैंसर हो रहा है, डॉक्टर कहते हैं कि जिस तरह से कैंसर बढ़ रहा है हर 3 व्यक्तियों में से 1 व्यक्ति की जो मृत्यु होगी उस कैंसर से ही होगी, और कैंसर बहुत दर्दायक होता है। तो फिर ऐसे दर्द से भरी परिस्थिति में कैसे कृष्ण भावना में रहना चाहिए उसका उन्होंने आदर्श प्रस्तुत करते हुए अपना शरीर त्याग दिया। तो एक व्यक्ति कह सकता है कि तो अन्याय था, मैं तो क्या पाप नहीं किए थे, मैं तो भगवान की सेवा कर रहा था। पर भक्त ये देखता नहीं है कि अन्याय हुआ है या अन्याय हुआ है, भक्त देखता है कि मैं कैसे सेवा कर सकता हूँ। और ये जो भाव रहता है जो भी परिस्थिति आ जाए मेरे जीवन में मैं कैसे सेवा कर सकता हूँ। तो क्या होता है, जो भी घटना होती है हमारे जीवन में कि वह घटना का हम कुछ अर्थ निकालते हैं, और वह अर्थ बुद्धिमत्ता से निकलना चाहिए हमें। क्या होता है कि स्ट्रेस इज कॉज नॉट बाय इवेंट्स बट बाय द मीनिंग्स दैट वी असाइन टू द इवेंट्स। जब हमें चिंता होती है, हमें स्ट्रेस होता है, वो क्यों होता है, कुछ परिस्थिति से नहीं होता है, वो परिस्थिति से हम क्या उसका अर्थ निकालते हैं उससे होता है। तो इसीलिए जो भी परिस्थिति हमारे जीवन में आती है, राधा गोकुलान भगवान की, सीताए गौरचंद्र भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रामैया की जय, श्री प्रभुपाद की जय, तो जो भी अर्थ है वह निकालना बहुत जरूरी है। उचित अगर हम उचित अर्थ निकालते हैं तो फिर हम प्रगति कर सकते हैं, अगर अनुचित अर्थ निकालते हैं तो हम हमारी अधोगति भी हो सकती है। तो इसीलिए जो गुरु साधु शास्त्र है वह क्या है, वो वास्तव में हमारे लिए ट्रांसलेटर है। ट्रांसलेटर का मतलब क्या है कि अगर कोई दूसरी भाषा में कोई बोल रहा है, अगर कोई भक्त आए रशिया से आए और रशियन में प्रवचन दे रहे, तो कोई भाषांतर कर रहा है, तो जो भाषांतर अगर नहीं हो रहा है तो वो सिर्फ एक ध्वनि लगेगी, ऊपर नीचे ध्वनि, उसका कुछ अर्थ नहीं लगेगा। भले ही वो पूरा अर्थपूर्ण है उसका अर्थ हमें समझ में नहीं आएगा। अर्थ कब समझ में आएगा, जब जो व्यक्ति वो भाषा जानता है और हमारी भाषा जानता है वह हमें समझाएगा कि इसका अर्थ ये है। तो मेरे एक किताब में मैं कहानी बताई है कैसे एक बार एक व्यक्ति सैर के लिए गया था, एक प्रदेश में गया था, वहां पर सुबह सैर के लिए चला गया, और तभी उसने देखा कि सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है और जोर से चिल्ला रहा है, उसके चेहरे पर थोड़ा क्रोध दिखाई दे रहा, हाथ ऊपर कर रहा है, वो व्यक्ति डर गया, मुझे आक्रमण करने आ रहा है, और तुरंत उसने अपना हाथ उठा लिया प्रतिकार करने के लिए, और वो चिल्लाते हुए जोर से चिल्ला रहा था, पर वो परदेशी भाषा में चिल्ला था, उसको समझ भी नहीं आया क्या चिल्ला रहा है, और वो प्रतिकार करने वाला था। तो व्यक्ति उसके बाजू में आया, बाजू से आगे चला गया और ठाक जोर से आवाज आया, उसको पीछे मुड़ के देखा उसने, तभी उसको समझ में आया कि पीछे से कोई चोर उस पर आक्रमण करने आ रहा था, और ये व्यक्ति उसको चेतावनी दे रहा था कि तुम्हारे पीछे चोर है, बचो बचो, पर वो व्यक्ति जो था वो दूसरी भाषा में बोल रहा था, इस समझ में नहीं आ रहा था। तो उसने सोचा कि अगर यह व्यक्ति मैं संरक्षण करने आ रहा था और मैं उस पर आक्रमण कर दे रहा था और फिर पीछे से ये चोर मुझे मार डालता था। तो इसीलिए जीवन में घटनाएं होती है उसका समझना बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस व्यक्ति को भाषा पता नहीं थी, तो जो हो रहा था उसका पूरा उल्टा अर्थ निकाल रहा था। देखिए ये फर्क है प्रत्यक्ष और शब्द का। प्रत्यक्ष देखेगा तो क्या लग रहा था, कितना ये व्यक्ति मुझे आक्रमण करने आ रहा है, पर अगर शब्द सुन लेता तो समझ आता था कि अरे ये व्यक्ति मेरी मदद करने आ रहा है। तो कई बार हमारे जीवन में समस्याएं आती है तो हम प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे, हमारे मन से विचार करेंगे, इंद्र से देखेंगे, ये तो बहुत अनुकूल प्रतिकूल है, पर शब्द की दृष्टि से देखेंगे तो हम समझेंगे कि वास्तव में ही अनुकूल है। तो एक बार एक पिता थे, वे जब बूढ़े हो गए तो उनके दो बेटे थे, तो दो किसान थे, तो उन्होंने अपने बेटों को बताया कि अभी मैं जो गुजर रहा हूं तो आप हमेशा छाया में चलना, जब शेर आप आपका खेती करने जाएंगे तो छाया में जाना और छाया में आना, और ऐसा करोगे तो आपकी जो आपके आपके जीवन में बहुत समृद्ध हो जाओगे आप। तो फिर वो पिताजी गुजर गए, फिर सोचा हमारे पिताजी ने आदेश दिया कि छाया में जाना चाहिए, ये छाया में कैसे जाए। उन्होंने क्या किया, अपने घर से जो खेत थी वहां तक एक शेड बना लिया, और शेड बनाया, फिर शेड से जाते थे और शेड से जाते थे। पर वो शेड बनाने में बहुत खर्चा हो गया, उसके लिए उनको लोन लेना पड़ा। और फिर बोले पिताजी तो कहा था कि छाया में जाओगे और आओगे तो फिर क्या होगा, आप समृद्ध हो जाओगे, पर यहां तो हम कंगाल हो गए, हम हमारे कर्ज आ गया है। तो फिर उनके पिताजी के एक मित्र थे, उनके पिताजी जैसे जैसे गुरु जैसे थे, वो वरिष्ठ मित्र थे, उन्होंने उनको जाके पूछा। तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिताजी ने तुमको बताया छाया में जाओ छाया में आओ, तो उसका अर्थ क्या है, तुमने उनको पूछा, क्या उन्होंने आपको बताया था शेड बनाओ? नहीं, छाया में जाओ छाया में आओ मतलब शेड बनाना चाहिए? नहीं। फिर क्या मतलब था, पूछा चाहिए था तुमने उनको? हमने सोचा कि हम खुद समझ लेंगे। नहीं, बोले उनका अर्थ क्या था कि आप सूर्य उदय होने के पहले छाया में जाओ और दिन भर मेहनत करो, और जब सूर्य अस्त हो जाएगा तब छाया में वापस आओ। इस तरह से अगर आप मेहनत करोगे अच्छी तरह से तो आप समृद्ध हो जाओगे। तो क्या है कि हम हमारे तर्क वितर्क से स्पष्टीकरण किए बिना कुछ समझ कुछ अर्थ निकालते हैं, और फिर उससे क्या होता है, हम जो परिस्थिति है उसको और खराब बना देते हैं। तो इसीलिए हमेशा अगर जो परिस्थिति हमारे जीवन में आ रही है, चाहे अभी पहले पहले भाग में देखा कि कोई वैष्णव कुछ कार्य करते हैं तो उन स्पष्टीकरण करने का प्रयास करना चाहिए, और हमारे जीवन में कुछ परिस्थिति आती है तो वह उसका भी स्पष्टीकरण हम, तो भगवान जो कार्य करते हैं वह हम समझ नहीं सकते। तो हमारे गुरु साधु शास्त्र जो है वो ट्रांसलेटर है। इसी व्यक्ति पिताजी ने बता दिया वो कि पिताजी के बोलने का अर्थ क्या था, वह वो समझ नहीं पाए। तो तर्क वितर्क करने जगह हमें गुरु से समझना चाहिए। तो इस तरह से अगर गुरु साधु शास्त्र के संपर्क में हम रहते हैं तो भले ही हम पूछे नहीं, हम शास्त्रों को भी प्रार्थनात्मक रूप से पढ़ते हैं, तो हमारे जीवन में जो भी हो रहा है वो किस तरह से अनुकूल हो रहा है, वह भगवान हमें ददामि बुद्धि योगम तम, ददामि बुद्धि योगम तम, जो प्रभुपाद जी बहुत बार श्लोक कोट करते थे, 10वें अध्याय का 10वां श्लोक। ये कोई चमत्कार नहीं है, हो सकता है चमत्कारिक रूप से कभी कभी, पर वास्तव में भगवान क्या बुद्धि देते हैं कि जो भी परिस्थिति हमारे जीवन में आए उसको हम भक्ति के अनुकूल कैसे बनाएं, वो उसको उसकी हम प्रतिक्रिया कैसे करें जिससे कि हमारी भक्ति में वृद्धि हो सके, वह बुद्धि हमें भगवान दे देंगे अगर हम प्रीतिपूर्वक भक्ति करते हैं तो। और तीसरा पॉइंट जो है यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि कैसे जो शरीर है उसका उद्देश्य हमें रखना चाहिए भगवान की सेवा करना, आत्म साक्षात्कार करना। तो जो इंद्रिय है, वैदिक शास्त्रों में तीन मार्ग बताए गए, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। जो योग मार्ग है, चक्रवर्ती पाद बताते हैं कि उसके पहले जो अष्टांग योग है उसके पहले चार जो स्तर है वो कर्म मार्ग में आते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम, क्योंकि वे कर्मयोग करते समय भी कर सकते हैं, और ध्यान धारण प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि ये ज्ञान मार्ग में आ सकते हैं, क्योंकि तभी व्यक्ति निष्क्रिय हो जाता है। आर रुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़ से तस्यैव क्षमा कारण मुच्यते। 6वें अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान बोलते हैं कि शुरुआत में आप कर्म करो वह आपकी विधि है, बाद में आप कर्म त्याग कर दो वह आपकी विधि है। तो कर्म करना ये कर्मयोग की विधि है, कर्म त्याग करना यह ज्ञान योग की विधि है। तो तीन प्रधान मार्ग बताए गए हैं वैदिक शास्त्र में, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। तो ये जो कर्म मार्ग है उसमें क्या होता है कि व्यक्ति इंद्रियों का, इन तीनों में फर्क क्या है और साम्य क्या है, कि तीनों इंद्रियों का कैसे उपयोग करना है इसके बारे में। तो कर्म मार्ग के लोग क्या कहते हैं, प्रवृत्ति मार्ग उसको कहते हैं, कि इंद्रियों का उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए आप करो, और वो अधिकांश रूप से अनैतिक रूप अधार्मिक रूप से करते हैं, कुछ लोग धार्मिक रूप से करते हैं, पर जो भी है इंद्रियों का उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए करना ये कर्म मार्ग है। और कर्म मार्ग से व्यक्ति कोई हताश हो जाएगा तो वो सोचेगा कि मैं इंद्रिय तृप्ति छोड़ दूंगा, तो फिर इंद्रियों का इंद्रिय तृप्ति के लिए उपयोग न करना, इंद्रियों को भूखा तड़पाना, वह ज्ञान मार्ग की विधि है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। तो भगवान जो कह रहे निराहारस्य देहिनः, दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो व्यक्ति आहार नहीं कर रहा है, वो इंद्रियों को आहार नहीं दे रहा है। इसीलिए अष्टांग योग का एक विधि है प्रत्याहार, हर एक इंद्रिय का आहार है। इसे जो आंखें है वो सुंदर रूप को देखना चाहती है, जो शरीर जो त्वचा है वो कोमल चीजों को स्पर्श करना चाहती है। तो ये सब आहार, ये सब भी हर एक इंद्रिय के आहार है। तो इंद्रिय को अपना आहार न देना, उसको प्रत्याहार कहते हैं। तो ज्ञान मार्ग में क्या करते हैं, जो भी आहार चाहिए वो दे देना, वो इंद्रिय वो कर्म मार्ग है। और जो भी आहार चाहिए वो बिल्कुल न देना, उसके विपरीत देना, वह क्या है, ज्ञान मार्ग है। जब जानते हैं कि कोई लोग तपस्या करना चाहते हैं तो वो ठंडी में वो ठंडे पानी के अंदर जाकर रहेंगे, या फिर गर्मी में अग्नि पर चारों ओर लगा देंगे। वो क्या कर रहे हैं, जो इंद्रियों की मांग है उसके विरुद्ध उसको देना। पर ये दोनों में क्या गलत है, ऐसा लगेगा कि ज्ञान मार्ग अच्छा है कर्म मार्ग गलत है, पर दोनों में गलत है कि वह दोनों स्वयं पे केंद्रित है, बोथ आर सेल्फ सेंटर्ड, मैं मेरे इंद्रियों से क्या करूं। पर भक्ति मार्ग क्या है, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुचते, मेरा जो इंद्रिया है वो भगवान ने मुझे दी है, भगवान की सेवा में उनको इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसीलिए हम जब देखते हैं कि भक्ति मार्ग, कभी कभी लोग कहते हैं कि भक्ति मार्ग जो है ये कम बुद्धि वाले लोगों के लिए है। वास्तव में जो लोग ऐसे कहते हैं वो कम बुद्धि वाले हैं। क्यों? क्योंकि जरूर भक्ति मार्ग जो है कम बुद्धि वाले लोगों के लिए भी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अधिक बुद्धि वालों के लोग नहीं है, उनकी सबके लिए है। भक्ति मार्ग की ये महिमा है कि कम बुद्धि वाले लोग भी उसको अपना सकते हैं। क्यों? क्योंकि कैसे है कि जो अगर एक जगह पे बैठ के ध्यान में जप करना, ध्यान करना है सीधा बैठ के, बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्या है, उसमें हमारे इंद्रिय को नहीं लगा रहे, इंद्रिय को स्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। पर अगर कीर्तन में नृत्य करना है तो बड़ा आसान है, हाथ पैर हिलाना है, शरीर हिलाना है, इंद्रियों को कार्य में लगाना बड़ा आसान है। हम देखते हैं जप और कीर्तन, इन दोनों में कीर्तन बड़ा आसान है, जप बोला तो तपस्या लगती, दो घंटे जप करना है, पर दो घंटे कीर्तन बोले तो उसकी तुलना में काफी आसान है, आनंददायक। क्यों? क्योंकि क्या है, उसमें इंद्रियों को हम लगा रहे हैं। उस तरह से जो कुछ लोग बोलते हैं कि मन में जप करना ऊंचा है, पर ऐसे नहीं है। जप में प्रधान क्या है कि मन को लगाना है, और अगर हम इंद्रियों को लगाते नहीं है तो मन को लगाना बड़ा मुश्किल है। हम मन को तभी जप में ही लगाएंगे, मन हमको माया के विचार में लगा देगा तभी। तो इसीलिए इंद्रियों को लगाते हैं, जोर से जप करते हैं, भले ही जोर से नहीं करेंगे तो मध्यम गति से, हम जिह्वा को हिलाते हैं जप करते हैं तो जब आसान होता है। तो पॉइंट यह है कि इंद्रियों को जो कार्य में लगाना ये बहुत महत्वपूर्ण है, पर इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना वह जो भौतिक शरीर का उद्देश्य है। तो कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग दोनों एक्सट्रीम है। एक कहते हैं कि इंद्रियों का जितना चाहिए इस्तेमाल करो, दूसरे कहते हैं इंद्रियों का बिल्कुल इस्तेमाल मत करो। पर प्रभुपाद जी यहां पे कोट करते हैं यावद अर्थ प्रयोजनम, कि इंद्रियों का वह इस्तेमाल करो जिससे कि भगवान की सेवा हो सके। और प्रभुपाद जी ने जो हमें कृष्ण भावनामृत आंदोलन दिया है उसमें शारीरिक स्तर पे, इंद्रियों के स्तर पे बहुत से कार्य दिए हैं। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि हम सब अधिकांश रूप से शारीरिक चेतना में होते हैं, और जब शारीरिक स्तर पे कार्य नहीं होता है हमें तो फिर हम ज्यादा भक्ति में लग नहीं सकते हैं। शारीरिक स्तर पे कार्य मतलब कि हम इधर उधर दौड़ के ये सेवा करना वो सेवा करना, ये अधिकांश रूप से जो हम भक्ति में सेवा बोलते हैं, डिवोशनल सर्विस प्रभुपाद जी बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है, ऐसे अधिकांश रूप से हमारा डिवोशन भले ही ना हो हम कम से कम सर्विस तो रख सकते हैं। हाँ, भक्ति भी नहीं हो तो सेवा करते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे तो भक्ति अपने आप आ जाएगी। अगर सेवा नहीं है, सिर्फ भक्ति करो बोलते, सिर्फ जप करो, सिर्फ श्रवण करो, सिर्फ मनन करो, और मुश्किल हो जाएगा, और मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए भक्त का उद्देश्य होता है कि मेरा जो शरीर है वह भगवान की सेवा के लिए है, और भगवान की सेवा के लिए जो भी उचित है मैं करूंगा। भगवान की सेवा के लिए प्रसाद ग्रहण करना जरूरी है, मैं प्रसाद ग्रहण करूंगा। अगर भगवान की योजना से अच्छा प्रसाद मिलता है तो अच्छा प्रसाद ग्रहण करूंगा, अगर सादा प्रसाद होगा सादा प्रसाद ग्रहण करूंगा। यदृच्छा लाभ संतुष्टो, तो पर भक्त ऐसे नहीं करता कि इतना प्रसाद ग्रहण करे कि सेवा न करे, अगर सेवा ही न कर पाए। प्रभुपाद जी को कुछ भक्त पूछे कि प्रभुपाद जी कल हम इतना खा लेते हैं, प्रसाद इतना स्वादिष्ट होता है, बोले यस यू कैन ईट बट देन वर्क वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट द फूड। अगर आप बहुत खाते हैं तो आप मेहनत करो, आप खाने के बाद सो मच जाओ। तो जो भक्त है, जैसे भक्ति का जीवन इंद्रियों को सुखाना नहीं है, इंद्रियों को तड़पाना नहीं है, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। और भक्त का उद्देश्य होता है कि अगर मैं मेरे शरीर से भगवान की सेवा नहीं कर सकता तो वो सोचता है उस शरीर से आसक्त नहीं होता है, इस शरीर का पालन क्यों करे। वैदिक शास्त्र में बताया गया कि एक प्रायव्रत नाम का व्रत होता है। प्रायव्रत मतलब क्या, व्यक्ति सोचता है कि अभी मुझे मेरा जीवन अंत करना है, तो फिर वो खाना छोड़ देता है, खाना छोड़ देता है। क्यों? तो क्या मुझे जीवन जीना ही नहीं है। तो हमारे संस्थान के एक वरिष्ठ सन्यासी थे नर्मदा महाराज, उनको जब अल्जीमर्स का डिसीज हो गया, पार्किंसंस का डिसीज हो गया। पार्किंसंस मतलब क्या होता है कि उसमें सारे शरीर का कुछ कार्य, शरीर पर नियंत्रण नहीं रहता है, मैं हाथ हिलाना चाहूंगा पर हाथ ऐसे हिलने लगेगा, कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो जब उनको ये बीमारी हो गई तो उन्होंने फैसला कर लिया कि ये प्रायव्रत ले ले वो, और फिर वो उन्होंने खाना बंद कर। तो कई भक्तों ने जाकर उनको बोला कि ऐसे करने की जरूरत नहीं है आपको, भले आप सेवा नहीं कर पाएंगे तो भी आपने इतनी सेवा के भक्त आपकी देखभाल करेंगे। उन्होंने क्या जवाब दिया, वो बोले कि जो शरीर का उद्देश्य था कि भगवान की सेवा करे, अगर ये शरीर से मैं भगवान की सेवा नहीं कर सकता तो ये शरीर का पालन करने की क्या जरूरत है मुझे। तो ये है अनासक्ति, शरीर का पालन हम जरूर करेंगे ताकि हम भगवान की सेवा कर सके। अगर भगवान की सेवा नहीं कर सकते तो फिर शरीर के पालन करने की जरूरत क्या है। कुलशेखर महाराज कहते हैं इदम शरीरम परिणाम पेशलम पतत्यवश्यम शतसंधि जर्जरम किम औषधम पृच्छसि मूढ़ धर्मते निरामयम कृष्ण रसायनम पिबा। तो क्यों आप दवाई के बारे में पूछ रहे हो, आप सिर्फ हरिनाम का जप करो, हरिनाम की औषधि लो। पर हम देखते हैं हम सब इतने डॉक्टर के पास जाते हैं, इतनी सारी दवाई लेते हैं, क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे शरीर से सेवा कर सके भगवान की। पर अगर ऐसी कोई बीमारी हो जाएगी, इसकी कोई हल नहीं है, इसकी कोई दवाई नहीं है, तो फिर किम औषधम पृच्छसि। प्रभुपाद जी ने उनके जीवन से दिखाया हमें, जब अंत में जब कोई डॉक्टर का कोई दवाई नहीं लेता, प्रभुपाद जी ने यही किया, निरामयम कृष्ण रसायनम पिबा। और हरिनाम का कीर्तन सुनते थे और फिर चरणामृत देते थे, और उस तरह से अपने शरीर उन्होंने त्याग कर दिया। तो भक्त न तो अपने शरीर से आसक्त होता है इंद्रियतृप्ति करने के लिए, तो अपने शरीर से अनासक्त होता है कि यह शरीर अशुद्ध है, शरीर माया है, मैं इसे फंसना नहीं चाहता, नहीं, भगवान की सेवा के लिए इस्तेमाल करता है। और एक बार प्रभुपाद जी को इसे मैं विराम दूंगा कि प्रभुपाद जी को एक बार पूछा गया था कि अगर प्रोफेसर हॉपकिंस जो थे उन्होंने पूछा कि आपने इतने सारे ग्रंथ लिखे हैं, इसमें से आपकी सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा क्या है, अगर आपको बताना है तो आप क्या बताओगे। तो प्रभुपाद जी ने बताया, आज श्लोक प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में कोट किया है कि ये श्लोक और उसका तात्पर्य, कामस्य न इंद्रिय प्रीतिर लाभो जीवे तयावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा न अर्थो यश्चेह कर्म भी। कि जो जो व्यक्ति की इच्छा शक्ति है वो इंद्र तृप्ति के लिए लगानी है, इच्छा शक्ति किस लगानी है, भगवत जिज्ञासा तत्व जिज्ञासा के लिए, और नार्थो यश्चेह कर्म भी, और इसके अलावा कोई भी कार्य हमें हमारा अर्थ हमारी आर्थिक शक्ति या किसी और कार्य को अर्थहीन नहीं अर्थपूर्ण नहीं मानना चाहिए, सिर्फ भगवान की सेवा को प्रधान मान के हमें भक्ति में प्रगति करके हम जैसे प्रभुपाद जी और प्रभुपाद जी के महान शिष्य है एक आदर्श सेवा का जीवन जीते हुए फिर हम शरीर को त्याग कर भगवत धाम लौट सकते हैं। सारांश में हमें तीन पॉइंट देखे आज। सबसे पहले कैसे जो भक्त या भगवान कुछ कार्य करते हैं तो भले ही हमें लग रहा हो यह अन्याय है, पर उसे बड़ा विचार होता है। और दूसरा कि कैसे जो भी हमारे जीवन में होता है भले ही हम समझ नहीं पाए क्यों हो रहा है, मैं विचार करना चाहिए कि इससे मैं क्या प्रतिक्रिया करूं, किस तरह से मैं इस परिस्थिति में सेवा करूं, ये परिस्थिति क्यों आई है ये तो पता नहीं है मुझे, पर इस परिस्थिति में सेवा कैसे करूं, ये विचार करें। और अंत में हमने देखा कि भक्त न तो इंद्रियों की संतुष्टि करना चाहता है, न तो इंद्रियों को भूखा तड़पाना चाहता है, भक्त चाहता है कि इंद्रियों को और शरीर को भगवान की सेवा में लगाए, जिससे कि वो गुरु को भगवान को प्रसन्न करके फिर भगवत धाम लौट सके। पंथराश्रमित भागवतम की श्री प्रभुपाद की गौर भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंद। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।